हर सांस से पूछ के बता दे इनके फासलों में तू है के नहीं मुझसे ही आज मुझको मिला दे देखूं आदतों में तू है के नहीं हर सांस से पूछ के बता दे इनके फासलों में तू है के नहीं मैं आस पास तेरे और मेरे पास तू है के
यही डूबे दिल मेरे
तुझको भावे गलियां तेरी गलियां तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां यूं तड़पावे गलियां तेरी गलियां
तू पनाह मेरी में, साया तेरा तू मकान मेरा, मैं बसेरा तेरा तू मंजिल मेरी, मैं मुसाफिर तेरा तुझ पे ही मैं आके रुका। खुद पे
अपने कर्म की करा दो
चलो तो प्रॉब्लम है तेरे को
नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है बस इस शोर से दूर जाना है मुझे
शोर अब है कहाँ इट्स ऑलमोस्ट ओवर राहुल लंदन न्यूयॉर्क ऑस्ट्रेलिया हर जगह शोज करने के बाद आज ऐसे दिन आ गए हैं कि तेरे पास ज्यादा काम नहीं है कोई काम ही नहीं करना चाहता तेरे साथ म्यूजिक डायरेक्टर्स फिल्म इंडस्ट्री स्टेज शोज पॉप एल्बम्स कुछ भी नहीं है तेरे पास नशे में गिरते पड़ते आर्टिस्ट को बार बार कौन संभालेगा हाँ No one's going to tolerate it. और इसकी वजह से आज ऐसे दिन आ गए हैं कि छोटे छोटे शहरों में शोज करने पड़ रहे हैं। और माफ करना, इस तरह के शोज में ये सब होता रहता है।
यार मेरे दिल में भी बहुत कुछ होता रहता है, तो क्या करूं?
कुछ मत कर, तो बस ये पीना कम कर दे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा यार, तू कल भी स्टार था और तू आज भी स्टार है।
बोल दिया जो बोलना था, तो मैं जाऊं?
हाँ जाना, लेकिन ये बॉम्बे नहीं है।
साहब आपकी गाड़ी।
कहाँ जा रहे? अनजान शहर में कहाँ जा रहे? नशे में गाड़ी वाड़ी ठोक देंगे, मर जाएंगे आप।
यार तू मुझे अच्छी तरह जानता है विवेक, मैं मरने के लिए नहीं पीता, पीने के लिए मरता हूँ। चल राहुल, सी यू विवेक।
राहुल
देख तू ना बचा
कतरा कतरा मैं जलूं शर्म से तेरे मिलूं जिस्म तेरा वो मुखा दिखला दूं करवटे में तंग हूं रात भर तो संग हूं तेरे हर एक अंग को सुलगा दूं भीगा सा मुझको तन तेरा लगे आजा तुझको भीलू मन मेरा कहे होने दे कुछ गलतियां रेंगती ये उंगलियां जिस्म के तो दरमियां ठहरा दे लम्हा को ये गर्म तू या उबलती बर्फ तू कुछ पे हो जा खर्च तू यूं आगे भीगा भीगा सा मुझको तन तेरा लगे आजा तुझको फेरू मन मेरा कहे बेकरी है बेबसी है बेकरार है आरजू रब्बा मेरे तू रब्बा मेरे तू जरा सा तू आसरा दे जरा सुकून
कोई सेवा करूं
तानू पता है ना कि ब्रेड की कोई सेल ही नहीं है ये जगह मेरे भाई को दे दो कम से कम भाड़ा तो आएगा
फिर तूने अपने भाई का नाम निकाला मैंने नहीं बेचनी है बेटी
अब कही हूं मैं आपसे और आपकी इस बेटी
मैंने कहा ना बाहर जाकर काम करने की कोई जरूरत नहीं है बार बार वही हट लगाती तू
तो आप क्या चाहते हैं कि हम इसी तरह जीते रहे एक ही बेटा है हमारा वो भी हमारी तरह मरता रहे
क्या लगा रखा ये बंद करिए जब देखो गिटार गिटार मेरा सर खाते रहता तू
कर रहे हो तुम
एक तो बेकरी चलती नहीं उसके बाद तेरी माँ मेरा सर खाते रहती है
सपनों के पीछे भागते हैं क्योंकि वो उन्हें सच करना चाहते हैं लेकिन कुछ लोग सपनों के पीछे इसलिए भागते हैं क्योंकि उन्हें अपनी सच्चाई से भागना होता है और आप बहुत दूर जाकर एक नई जिंदगी जीना चाहते हो उतनी दूर जहां आपकी पुरानी जिंदगी के कोई निशान ना हो और इस चक्कर में आप ये नहीं देखते हो कि आप सही जा रहे हो या गलत बस अब भाग जाते हो अपने माँ बाप से दूर।
इस कदर प्यार है तुमसे हम सफर चांदनी नरम से रात के होंठ पर तेरी नादानियां मेरी गुस्ताखियां
listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
Are you self-employed and having trouble getting a mortgage? Bank declined your mortgage? Are you in high interest credit card debts? Is your bad credit stopping you to get mortgage? Do you need emergency mortgage? Only one answer for all these questions. Call Harry Song, Principal Broker of Majestic Mortgage.
For Majestic Service, call Majestic Mortgage. Your best interest is guaranteed. 647-228-1000
कर्ज से निजात के लिए एक ही नाम मोहम्मद सिद्दीक ऑल द सॉल्यूशन पुरसकून जिंदगी और क्रेडिटर्स की कॉल से छुटकारा
मोहम्मद सिद्दीक ऑल डेट सॉल्यूशन बैंक्रप्सी इंसॉल्वेंसी कंसोलिडेशन करते हैं अप टू 80% मोहम्मद सिद्दीक आपके लिए काम करते हैं पुरसकून जिंदगी अच्छी सेहत और लंबी उम्र की जामिन अपनी जिंदगी को पुरसकून करने के लिए कर्जों से पाक करने के लिए राबिता कीजिए मोहम्मद सिद्दीक 416-671-0577
ਪਾਈ ਸਸਤਾ ਲਾ ਲਾ ਇੰਜ ਕਰ ਤੂੰ 6 ਦੀ ਬਜਾਏ 5 ਲੈ ਲਾ
ਓਹੋ ਸੱਲਾ ਭੈਣ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਬਾਰਗੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੂਡ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਫਰੈਸ਼ ਗਰੋਸਰੀ ਫਰੂਟਸ ਦਾਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ
ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੂਡ ਸੈਂਟਰ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਰੋਸਰੀਜ਼ ਫਲ ਫਰੂਟ ਦਾਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਪਲੇਟਾਂ ਬਾਟੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਰੱਖੜੀਆਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵੈਰਾਈਟੀ ਵੀ ਹੈ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੂਡ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ 9 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਓ
अब मॉर्गेज की परेशानी हुई खत्म कीस्टोन फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ कमर्शियल मॉर्गेज रेजिडेंशियल मॉर्गेज प्राइवेट मॉर्गेज कंस्ट्रक्शन मॉर्गेज रीफाइनेंस रिन्यूअल सेल्फ एम्प्लॉयड और सेकंड मॉर्गेज ऑल योर मॉर्गेज सॉल्यूशंस कीस्टोन फाइनेंशियल एक्सपर्ट की जैस्मीन परमार से आज ही कॉन्टेक्ट कीजिए इनके पास है मॉर्गेज इंडस्ट्री में सालों का तजुर्बा और आपकी मॉर्गेज का आसान हल जैस्मीन परमार मॉर्गेज ब्रोकर कॉल टुडे 647
647-923-5659. Speak your language, English, Punjabi and Hindi. License number 13654.
इन सब कामों के लिए तो मुझे बैक होम ही जाना पड़ेगा।
कौन से काम?
वही, बेटे की शादी सर पर है और ज्वेलरी का खास काम अभी तक नहीं हुआ।
बस इतनी छोटी सी बात, पायल ज्वेलर्स पे हर किस्म की ज्वेलरी है और वो स्पेशलाइज करते हैं इन सब में ही, दुबई, सिंगापुर, इंडिया, पाकिस्तान और यहाँ की तमाम लेटेस्ट ज्वेलरी।
मुझे उनका एड्रेस बताओ, मैं आज ही ये काम जाके करवाती हूँ।
जी जी बिल्कुल, पायल ज्वेलर्स का एड्रेस है 2720 नॉर्थ पार्क ड्राइव, यूनिट 42, ब्रैम्पटन। पायल उसके असलम भाई को कॉल करें ना एट 9057907879, दैट इज
حضرات ہم شریف شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ اچھا دن ہے۔ میں آج پورے شہر سے جب گزرتا ہوا آیا تو مجھے ایک خیال شہر سے گزرتے ہوا کہ ہر دیوار پہ کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہے، یعنی دیواریں کوئی بھی خالی نہیں، کسی پہ حکیم کا اشتہار ہے، اس کے ساتھ چار پانچ واقعات لکھے ہوئے ہیں جو کہ ناقابل بیان ہے، اس کے بعد کچھ بیماریاں ہیں جو کہ آدمی زیادہ پڑے تو اس کو ہو سکتی ہیں، اس کے بعد آگے چلے آپ دیواروں کے اوپر حکیموں کے چار، مکان کے کرائے، اس کے بعد پنکھے کی دکانوں کے، اس کے بعد فلاں، پھر اس کے بعد کیبل والے کا، پھر اس کے بعد فلاں، اس کے کئی جگہ پہ کچھ اور بھی لکھا ہوا، یہاں یہ کرنا منع ہے، کرنے والا یوں ہے، یعنی اب بیچ بیچ میں آپ خود جو ہے نا وہ گیپس پورے کر لیں۔ یہ سب کچھ جب ہم دیوار پہ پڑھتے تو میں سوچتا ہوں،
پریس دا بیل آئیکن آن دی یوٹیوب ایپ اینڈ نیور مس انادر اپڈیٹ۔
کیا جب کوئی آدمی ہمارے شہر میں انٹر ہوتا ہے تو کیا ہم اسے اچھی دیواریں بھی نہیں دے سکتے؟ کیا ہم اسے دیواروں پہ لکھے ہوئے اچھے کلمات بھی نہیں دے سکتے؟ کیا ہم ان دیواروں کو سجا نہیں سکتے؟ کیا ہم صرف ان دیواروں پہ گندے جملے، بےہودہ نعرے اور بری باتیں لکھنا ہم سمجھتے ہم شہر کو سجا رہے ہیں؟ جی نہیں، ہم شہر کو گندگی کا ڈھیر بنا رہے ہیں، کیونکہ دیواروں پہ گند لکھا ہوا ہو تو سمجھ لیجیے ہم گندگی کے بیچ میں ہیں۔ تو پلیز اپنے شہر کی دیواروں کو صاف رکھیں، اگر لکھیں تو اس پہ ایسی کوئی تحریر لکھیں جو کہ پڑھنے کے قابل ہو، ایسی کوئی چیز بنائیں جو دیکھنے کے قابل ہو۔ کیونکہ ایک بار مجھے میرے بہت بہترین دوست انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ یا تو ایسا لکھو کہ اسے پڑھا جائے یا پھر ایسا لکھو کہ اس پہ لکھا جائے۔ تو جب ہم ایسی تھنکنگ میں آئیں گے تو ہم اپنے شہر کا ایک لک بنائیں گے، ایک بڑا ایجوکیٹڈ لک۔ تو ہم سب کو مل کے شہروں کو سجانا ہے، اپنے تمام چھوٹے بڑے شہروں کو پاکستان کے ایک خوبصورت لک دینا ہے۔ اگر وہاں سے ٹرین بھی گزرے تو نظارہ قابل دید ہو، اور اوپر سے جہاز آئے تو زمین قابل دید ہو۔ اگر یہ دو چیزیں ہم بنا لیں گے تو ہم اپنے ملک کو ایک بہترین شہر دے سکتے ہیں۔ اور یہ شہر کہاں کہاں جا رہا ہے، اس کے سمندر پہ، اس کے جہازوں کو کنارے پہ لگانے میں اور اس کے جہازوں کے آنے میں کیا کیا ترقی ہو سکتی ہے اور کیا کیا ترقی ہوئی ہے، اس میں بات کریں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ آتے ہیں بریک کے بعد، ملتے ہیں۔ वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और खादिम हजरात, ब्रेक पे जाने से पहले हमने जो आपके सामने अपने मेहमान के बारे में बताया, उनकी पूरी शोरील हमने आपको दिखाई, पसे पर्दा वो मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि जो इस्तकबाल हो वो उनके शायाना शान भी हो, क्योंकि मैं समझता हूं कि सियासत में सबसे बड़ी जो चीज होती है हुकूमत में आने के पास उस मिनिस्टर की कारकर्दगी, उसका काम, उसका अंदाज, खिदमत करने का वो जज्बा, लीडराना सलाहियत, और फिर एक अपने लीडर के मंशूर, उसके मकसद और उनके इमेज को लेकर के चलना। मैं समझता हूं इन सारी बातों पे, उस मेयार पे पूरे उतरते हैं। खवातीन हजरात, आपकी पुरजोर तालियों में तशरीफ लाते हैं, मिनिस्टर है हमारी शिपिंग और पोर्ट के, और काम इनके, हम इनसे खुद पूछेंगे कहां कहां पर क्या क्या काम हुआ, क्या क्या किया। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाएंगे बाबर खान गोरे। अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम।
खुशामदीद प्रोग्राम शरीफ शो में।
आपको भी मुबारक हो, माशाल्लाह इतना जबरदस्त प्रोग्राम आपने किया हुआ है।
बस जी, हम तो शरीफों को यहाँ बुला करके उनसे शरीफाना माहौल में गुफ्तगू करते हैं।
बहुत अच्छी बात है, सियासतदानों को शरीफों में शुमार किया जा रहा है, वरना हमेशा तो बुरा भला ही रहता है।
बहुत अच्छी बात है कि आपने इतना हसीन एतराफ किया कि सियासतदानों को शरीफों में शुमार किया जा रहा है। बात यह है बाबर भाई की, आज मैं आपको बाबर भाई कह सकता हूँ,
बिल्कुल
इजाजत दीजिएगा, मुसलमान भी भाई भाई होते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल।
तो इस वक्त आप जिस मिनिस्ट्री में हैं और आप जिस पार्टी से आप आए हैं, उनकी खिदमात की आप भी एक मुकम्मल तस्वीर है। यह मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप मेरे प्रोग्राम में आए, बल्कि जमाना कह रहा है, आपके मुखालिफिन भी इस बात को कहते हैं कि आप लोगों ने अपने काम से जो है एक बड़ा इमेज जो है ना वो ये साबित कर दिया आपने कि आपको सिंध दे करके देखा, हालांकि आप पार्टी जो है वो पूरे पाकिस्तान में जो है ना इस वक्त इंशाल्लाह एस्टैब्लिश हो रही है, मगर सिंध गवर्नमेंट में क्योंकि आप हैं, आप शिपिंग में, आप माशाल्लाह फेडरल मिनिस्टर हैं। आप मुझे बताएंगे कि सबसे पहले तो हम ये देखना चाहेंगे कि आप पैदा कब होते हैं, ऐसे लोग किस महीने में पैदा होते हैं जो इतने कौमी जज्बे से सरशार होते हैं।
मेरी पैदाइश हुई थी सितंबर में, 16 सितंबर 1961, नाजमाबाद, गोल मार्केट
नाजमाबाद,
वहाँ पे हॉस्पिटल जियाउद्दीन हॉस्पिटल।
जी जी, जियाउद्दीन अभी भी है वो
हॉस्पिटल, अभी भी है।
आपकी शख्सियत, जो आपका सियासी करियर कॉलेज से शुरू हुआ या आपने एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आप आए पॉलिटिक्स में?
मैं कॉलेज के जमाने में स्टूडेंट लाइफ में भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था, लेकिन मैंने फिर पॉलिटिक्स छोड़ के कारोबार शुरू कर दिया था।
अच्छा।
उसके बाद मैं उस वक्त यूएसए में था, एक मौका दिया कि भाई हम चाहते हैं कि नॉर्थ अहमदाबाद से, मैंने पहला इलेक्शन लड़ा था 93 में।
आप पहले एमपीए हुए, फिर एमएनए हुए, और अब माशाल्लाह
पहले एमपीए था, फिर एमएनए बना, फिर सेनेटर बना,
सेनेटर,
फिर दोबारा सेनेटर बना।
तो आपने वो सियासत शुरू करी, आप आ गए स्टूडेंट सियासत पॉलिटिक्स से आए आप?
जी
स्टूडेंट, जो एपीएम है
नहीं, उस जमाने में जिस वक्त मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था, उस वक्त उर्दू साइंस कॉलेज, आपने आप भी उस जमाने में आते थे याद होगा, और वहां पे पीएसएफ में उस जमाने में मेरी,
जी जी,
लेकिन उस जमाने एपीएमएसओ जो है वो शुरू हुई थी।
एपीएमएसओ शुरू हुई थी
तो उसके बाद एकदम फिर, लेकिन उस वक्त जिस वक्त ये सिलसिला चला था तो मैं छोड़ चुका था पॉलिटिक्स और मैं कारोबार की तरफ रवाना था, लेकिन बीच में एक ऐसा हादसा आया 92 में कि जब ये एमके के खिलाफ ऑपरेशन हुआ और एक ग्रुप हकी ग्रुप को लाया गया, और फिर एक मोड़ वो आया जब 93 में टिकट दिया और मुझे वो लेके आए आवाम की खिदमत के लिए, तो उसके बाद से फिर मैं मुसलसल पॉलिटिक्स,
फिर आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर दिया, और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से आपने जो है ना टिकट लिया, पहला एमपीए, फिर एमएनए, उसके बाद सेनेटर, फिर सेनेटर, माशाल्लाह मिनिस्ट्री आ गई आपके पास फेडरल, आप पहले भी फेडरल मिनिस्टर है, आप बहुत अरसे से फेडरल मिनिस्ट्री में, और इसी मिनिस्ट्री में।
जी जी।
अच्छा, इस मिनिस्ट्री में कितना अरसा आपको हो गया? तकरीबन 7-8 साल हो गए।
तकरीबन 6 साल।
6 साल हो गए। 6 सालों में आपकी मिनिस्ट्री की क्या अचीवमेंट्स हैं? देखिए, शिपिंग ने क्या अचीवमेंट,
देखिए जब ये 2004 में इसको डिवाइड किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का एक पार्ट था,
जी जी,
मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के जो है वो मुख्तलिफ मिनिस्टरों को एडजस्ट करने के लिए टुकड़े किए गए
जी,
क्योंकि कम्युनिकेशन में पहले टेलीकॉम भी होता था, यानी जो टेलीफोन आपका था, उसके साथ साथ आपका रोड नेटवर्क होता था, आपके पोस्ट ऑफिस होते थे, आपका रेलवे होता था, और ये पोर्ट्स एंड शिपिंग था। ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट दूसरे ममालिक में कहते हैं, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन थी
जी।
इसको जब डिवाइड किया गया मुख्तलिफ पार्टी को एडजस्ट करने के लिए, जो हमारी काबीना बड़ी की जाती है, उस वक्त शौकत अजीज की जो कैबिनेट थी उसमें फैसला हुआ कि मजीद लोगों को लेके आना है, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि हम कम्युनिकेशन को दो टुकड़े कर रहे हैं, मजीद पहले भी हो चुके थे और मजीद कर रहे हैं, एनएचए पोस्ट ऑफिस अलग कर रहे हैं और पोर्ट्स एंड शिपिंग अलग कर रहे हैं, तो आप किसको फोकियत देंगे? तो लोगों के जहन में ये था कि शायद मैं एनएचए को दूंगा, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में थी या पोस्ट ऑफिस भी। मैंने फोकस किया पोर्ट्स एंड शिपिंग, क्योंकि वो टोटल काम कराची में दो ही पोर्ट्स थी, एक हम ग्वादर में बना रहे थे, तो मेरा ये था कि चूंकि घर कराची में तो ज्यादा बेहतर होगा कि मैं इसको लूं। तो बहुत से मेरे साथ जो मेरे कुलीग्स थे हंस रहे थे, कह रहे थे बहुत छोटी सी मिनिस्ट्री है। मैंने आप फिक्र नहीं करो, छोटी बड़ी बात नहीं, काम करना चाहिए। तो उसी मिनिस्ट्री को आज इतना कर देगा हर आदमी पोर्ट्स एंड शिपिंग।
अब वो मिनिस्ट्री जो है इस वक्त एक बड़ी मिनिस्ट्री है,
हर आदमी चाहता है कि वो मिनिस्ट्री ले, ये झगड़े होते हैं
उस मिनिस्ट्री को। इतना
माशाल्लाह काम किया हमने,
इतना काम करके आपने उसको इस छोटी मिनिस्ट्री को इतना वसी कर दिया
जी,
कि अब लोग कहते हैं कि यार ये तो बड़ी बहुत बड़ी मिनिस्ट्री,
बहुत बड़ी मिनिस्ट्री,
और हालांकि उसको आपने अपने काम से बड़ा किया।
हालांकि दो पोर्ट्स है खाली राजीव, एक ग्वादर में, तीसरी पोर्ट है हमारी
जी,
ये हमारी टोटल मिनिस्ट्री।
और
पीएनएससी है जो उसमें ज्यादातर हमारे प्राइवेट शेयर होल्डर
है, सिंध में बेस है
जी, सिंध बेस और बलोचिस्तान,
बलोचिस्तान
इस्लामाबाद, तो मैं पोर्ट ले जाने से रहा,
पोर्ट वहां कैसे लेके जाएंगे इस्लामाबाद। बल्कि मेरा तो अपना ख्याल है, मेरा अपना ख्याल है शायद अनकरीम फ्यूचर के अंदर शायद कैपिटल भी कराची मूव हो जाए, जो इस्लामाबाद के हालात है, मुझे लगता है, मैं तो नहीं, मुझे लगता है ऐसा
कराची तो नहीं, लेकिन अगर कभी ऐसा कोई, वैसे ऐसा कोई है नहीं, लेकिन कभी ऐसा कोई प्रपोजल आएगा तो मेरी ख्वाहिश होगी कि ग्वादर जो है वो पाकिस्तान का कैपिटल बने, क्योंकि फ्यूचर जो है पाकिस्तान का ग्वादर में,
ग्वादर में चले हम देखते हैं, अगर फ्यूचर ग्वादर है तो ग्वादर में होना चाहिए। अगर हम ग्वादर में चले जाए तो हमें बहुत सारी फैसिलिटीज और वहां के लोगों को भी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी जिनसे कि वो महरूम है,
बहुत प्यार करने वाले लोग हैं,
बहुत प्यार और महरूम भी है, वो
महरूम है, उनके साथ ज्यादतियां भी हुई हैं, और हमारी कोशिश है, बल्कि मैंने कैबिनेट में जब जमाली साहब की गवर्नमेंट थी वो बड़े काइंड थे, उन्होंने, मैंने ये प्रपोजल दिया था कि ग्वादर में जितनी भी मैं लोगों को एम्प्लॉय करूंगा, नौकरियां दूंगा, वो ग्वादर के होने चाहिए, तो उसमें कैबिनेट में फैसला मैंने कराया था, हालांकि मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से नहीं था,
नहीं।
लेकिन मैंने वो फैसला मेरे जो है वो रिक्वेस्ट पे हुआ,
इंसानियत की बेस पे कराया आपने, इंसानियत
सब रहा।
और मैं समझता हूँ कि इंसानियत की बेस के ऊपर मैं भी ये बात कह रहा हूँ कि ग्वादर के लोगों को कंपलसेट करना चाहिए गवर्नमेंट को, किसी न किसी तरीके से
पूरे बलूचिस्तान
करीब जाना चाहिए, पूरे बलूचिस्तान
में, क्योंकि वहाँ एहसास महरूमी है,
एहसास महरूमी, उनके हमें करीब जाना चाहिए,
जाना चाहिए,
हम लोगों को सबको जाना चाहिए, हर किस्म के,
हम करीब आने की वजह एक दूसरे दूर हो रहे हैं,
हम दूर हो रहे हैं,
जंगली माशरा हमारे यहाँ क्रिएट हो रहा है, हर आदमी एक दूसरे को ऐसा समझता है दुश्मन है, हालांकि ये जरूरत है कि हमें सबको लेकर चले, मोहब्बत प्यार से चले, और इस तरह हम
सबको साथ लेकर चले,
सब साथ चले,
बिल्कुल सर, बिल्कुल, वेरी नाइस, बिल्कुल आपकी बात में बहुत सच्चाई है, रवैयों से मुल्क बनते हैं, रवैयों से शहर बनते हैं, हमें तो पाकिस्तान की खैर मांगनी है, उसमें अमन रखना है, अगर ये नाम बदलने से क्या होता है, उससे क्या हो सकता है, अगर मैं अपना नाम बाबर खान गौरी रख लूं तो क्या मैं फेडरल मिनिस्टर बन जाऊंगा? और अगर आप अपना नाम उमर शरीफ रख लें तो अगर किसी ने आपको शो पे बुला लिया फिर क्या होगा? नाम को
वैसे
काम।
वैसे मैं आपको एक बार बताऊं, ये चैलेंज मत दीजिएगा, क्योंकि एमकेएम वाले चैलेंज लेते हैं और वो बड़े बड़े फंकार बन जाएंगे फिर।
मैं आपने सही कहा,
हमें बड़े बड़े चैलेंज
देते हैं, मैं उनकी चैलेंज नहीं कर रहा, बाखुदा चैलेंज नहीं, मुझे पता है, मैं तो इन बातों को समझ। अच्छा अचीवमेंट क्या, एक तो आपने ये बताया कि ये आपने किया, गोल
से पहले देखिए, मैं जब मैंने जैसी मिनिस्ट्री ली तो मेरा एक टारगेट था कि मुझे ग्वादर पोर्ट कंप्लीट करनी है, अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने टाइम पे कंप्लीट की और आज वो ऑपरेशन
है। बाबर भाई उसके अंदर एक मसला ये हो रहा है कि अभी तक ग्वादर की जो पोर्ट है वो ऑन नहीं है, मतलब वर्किंग
ऑपरेशनल पोजीशन में, उसमें भाई बात यह है कि जब ग्वादर पोर्ट बनाने का जब कॉन्सेप्ट था, जब बना तय हुआ, उसमें सबसे पहले जरूरी होता है कि रोड नेटवर्क कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि जो भी इम्पोर्टर एक्सपोर्टर होगा पाकिस्तान के दीगर इलाकों का, तो वो ग्वादर से जब अपनी चीजें मंगाएगा या एक्सपोर्ट करेगा, जब उसकी ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट जो है वो कराची से कम होगी,
तो वो कब तक
रोड इज ऑपरेशनल, आप जहाज अभी भी आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन वो सब गवर्नमेंट कार्गो है।
रोड जो है हमारा ये
रोड्स के लिए जो एनएचए टारगेट दे रही है अब वो 2013 का दे रही है, लेकिन मैं अगर वो अब वो भी जब अगर अब फंड्स अभी मिल गए, लेकिन जिस तरह अभी स्लो हुआ है और प्राइम मिनिस्टर साहब
2015 में चला जाए,
15 में ना चला जाए, तो प्राइम मिनिस्टर साहब की ये कोशिश है कि वक्त पे इनको जो है वो पेमेंट हो जाए और काम जो है वो शुरू रहे।
वहां से हो जाए शुरू इंशाल्लाह ताला।
और 2000 आधी से ज्यादा रोड बन गई है,
बन गई है,
आधा पार्ट रहेगा, N8 कहलाती है वो,
N8 अभी बन रही है इंशाल्लाह ताला। 2015 में आकर के सारा रोड का कंप्लीट हो जाता है, हमारे लिंक जो है ना साउथ एशिया में बढ़ जाए और हमारा सामान आना जाना अच्छा हो जाए,
खासतौर पर ग्वादर,
अल्लाह करे ग्वादर में। बताइए, आपने एक सिलसिला शुरू किया था कुछ अर से पहले, मैंने देखा था अखबार में, उसमें सिलसिला भी शुरू हुआ था, क्रूज आपने शुरू किए थे यहाँ से दुबई के, वो क्रूज जो शुरू हुए थे उसमें बड़ी इश्तेहार आता है, वो सिलसिला चला फिर एकदम रुक गया।
पाकिस्तानियों को जो है वो बड़ी जरूरत है कि वो उनको टाइम चाहिए कुछ ना कुछ अपने आप को एक्टिविटीज करने का ना।
सही,
हमारा हर वक्त जो अगर माशरे में जो देखें तो एक तनाव की कैफियत में रहता है इंसान,
सब
दफ्तर से आया बीवी पे गर्म हो गया, बीवी को छोड़ा तो बच्चों पे गर्म हो गया,
क्योंकि बैगन वाले तक तनाव का शिकार,
हर आदमी तनाव का शिकार है,
गाड़ी चल रही है,
हाँ,
पहिया चलता जा रहा है, बैठो 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 और गाड़ी चल रही है, उतरो उतरो, वो आदमी बोले उतर रहे चल रहे चलते में, लोग भी ऐसे हो गए आराम से चढ़ जाते हैं, आराम से उतर जाते हैं।
तो हमारा ये जो माशरा तनाव की जो है, कैसे आपने देखा कि यूरोप में, अमेरिका में, दुनिया में लोग अब कम से कम साल में एक महीने अपने आप वो वेकेशन लेते हैं, इसी वजह से लेते हैं कि अपना रिलैक्स हो, फिर आके काम करें, फिर बाकी जो तरक्की याफ्ता ममालिक में 5 दिन काम होता है, मंडे से फ्राइडे 2 दिन आप भी दुनिया घूमें, 2 दिन वो रिलैक्स होकर घूमते, बीच पे चले जाएंगे, कैसिनोस पे जाएंगे, मुख्तलिफ जगह पे जाएंगे, या पहाड़ी मुकाम पे कहीं चले गए, हमारे ये कॉन्सेप्ट नहीं है घूमने फिरने का, इसको हमने इंट्रोड्यूस किया
है, नहीं हफ्ते इतवार को,
हाँ
हफ्ते को जुम्मे के प्रॉब्लम होते हैं, जुम्मे को जुमेरात के होते हैं, हम एक दिन एडवांस तो प्रॉब्लम कैरी कर रहे हैं,
फिर वो बेगम का अम्मी क्या जाना है,
अम्मी क्या, वो बीवियों का अम्मी जाना बंद नहीं होता, ओए होए।
अच्छा, तो उसको हमने मद्देनजर रखते हुए, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने कहा कि एक क्रूज दुनिया, जब ये क्रूज चलते हैं तो हमारी कौम को भी जरूरत है, तो एक दुबई से हमने कहा कि हम अपना क्रूज शिप शुरू कर रहे हैं, एक पार्टी आई थी, उन्होंने ये क्रूज लेके आए और उसके लिए हमने परमिशन ली, बड़ी मुश्किल से हमें दुबई ने क्रूज स्टेटस की परमिशन दी, उसमें नीलोफर बख्तियार जो उस बार टूरिज्म की मिनिस्टर थी, उन्होंने भी मेरे साथ